पृष्ठ संख्या 283। इस तरह का अर्थ स्खलन पूरी कविता में जगह जगह व्याप्त है। प्रमत्त दानों का नृत्य तो कुछ कुछ ठीक भी लगता है, जो मेघों का दरवाजा बार बार पीट रहा है, लेकिन भूतों की कड़कड़ाहट से मेघ गर्जन की तुलना हास्यास्पद लगती है। ध्वनि मार्गों का इतना उल्लंघन अजीब लगता है। बादलों की चाहे कितनी ही भयानक गर्जना क्यों न हो, उसमें से मंद्र स्वर ओझल नहीं होता। उसके लिए गड़गड़ाहट शब्द ठीक है। कड़कड़ की गर्जन ध्वनि तो मैंने कभी नहीं सुनी। पृष्ठ संख्या 284। रविंद्रनाथ जब भयावह बिंबों का भी प्रयोग करते हैं तो वे सघोष ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जैसे भीषण भायल, प्रमत्तदारों, श्रावण सन्यासी या निराला द्वारा प्रयुक्त गर्जन भैरव संसार। इन बिंबमालाओं में बादल की भयंकर गर्जना के भीतर भी उसके मंत्र का उल्लंघन नहीं लगता, लेकिन प्रकटा विकट महाआकार के दांत किटकिटाने की अभिव्यक्ति ज़्यादा प्रखर लगती है। इसी तरह परियों के बच्चे वाली कोमल उपमा की तुलना में बादलराग की चौथी कविता में शिशु का बिंब और उसकी अर्थसघनता, कथा विकास और उसका संघटित शब्दबंध बहुत आगे है। दरअसल निराला की वर्षा कविताएं और उनमें भी बादलराग उनके गहरे संघटित काव्य व्यक्तित्व की उपज हैं। बादलराग अपने संपूर्ण भाषिक और विषयगत वैविध्य में एक संघटित सिंफनी है, एक पूर्ण संरचना। पहली कविता का वर्ष का हर्ष दूसरी कविता में विप्लव का नव जलधर हो जाता है, वही तीसरी कविता में त्रिलोकजित इंद्र धनुर्धर सव्यसाची के रूप में अपने श्रमित प्रवास के बाद अरण्य में सूख रही श्यामा प्रिया पृथ्वी से मिलने आता है। वही प्रियदर्शन एक भोले भाले शिशु के अप्रहित कोमल गायन के रूप में चौथी कविता में बदल जाता है। पांचवी कविता में वही अनेक रूपाकार ग्रहण करता हुआ कभी कुसुम कोमल और कभी कठोर पवि की तरह बनता है, और छठी तथा अंतिम कविता में वही जीवन का पारावार कहकर बुलाया जाता है। जिस तरह उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर की जुगलबंदी झाला में पहुंचकर एक संगठित अपरूप सिंफनी की रचना करती है, ठीक उसी तरह ये छहों कविताएं मिलकर कविता की एक अद्भुत सिंफनी तैयार करती हैं, जिसके आगे रविंद्रनाथ या कालिदास या पंत की रचनाएं कहीं नहीं ठहरती। निराला के सारे संग्रहों में वर्षा संबंधी केवल एक कविता ऐसी मिलती है जिसमें बादल के विनाशकारी रूप का चित्रण किया गया है, लेकिन उसे भी निराला ने शाप की संज्ञा दी है और अंत में इस विनाश लीला से मुक्ति के लिए ही वह प्रार्थना करते हैं। वैसे ही कविता के शब्द संयोजन में कहीं भी भर्यात्तता का आभास नहीं मिलता। एक सर्वांत दुख भाव की अभिव्यक्ति के बाद उससे मुक्ति की पवित्र प्रार्थना ही मिलती है। शाप तुम्हारा गरज उठे सौ सौ बादल, ताप नवारा कांपे पृथ्वी के तरुदल। पृष्ठ संख्या 285। हर हर करती समीर जीवन यौरो अधीर, नीचे ऊपर अपार सलिल राशि विसंभार, मुहुर मुहु वज्रहार। आओ अनिमेश नयन करो निरामय वर्षण, संचय हे संघर्षण कलित साधना के शुभ फल। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पंक्तियाँ एकदम शांत हैं। धीरे धीरे वज्रपात हो रहा है। अपरंपार जलराश गृह वन में धीरे धीरे सरक रही है। पृथ्वी का ताप दूर नहीं हुआ, लेकिन सर्वनाशी अवश्यंभावी है, इसे सिर्फ प्रार्थना से ही रोका जा सकता है। अतः कवि उस निश्चल पवित्र प्रार्थना की ओर झुकता है। हे संघर्षण, विनाश नहीं, तुम्हारी तपस्या का फल संचय है, शुभ है, समृद्धि है, विनाश नहीं। आओ और अपनी साधना का शुभ फल हम पर वारो। इस तरह इस कविता की मूल प्रेरणा भी सर्वनाश का चित्रण ना होकर उससे मुक्ति की निरामय प्रार्थना ही है। दरअसल जैसा कि प्रारंभ में ही कहीं कहा है, निराला की मानसिक बनावट में सर्वनाश का चित्र कभी भी फिट इन नहीं करता। वह सुख समृद्धि उल्लास और प्रार्थना के कवि हैं। सुख, समृद्धि, उल्लास, उद्दाम, आनंद और पवित्रता तथा गरिमा की निरामय अनुभूति के रूप में वर्षा का चित्रण करने के बाद, बादल राग की अद्वितीय अपूर्व सिंफनी की रचना के बाद, निराला की वर्षा कविताओं का एक महत्वपूर्ण स्वर अपने आंतरिक अवसाद, खिन्नता, उदासी और उत्कट मनस्ताप की अभिव्यक्ति देना है। वैसे संख्या की दृष्टि से ऐसी कविताएं बहुत कम हैं, फिर भी उनका रचनात्मक आवेग और आत्म अभिव्यक्ति की विदग्धता अपूर्व है। दरअसल ऐसी वर्षा कविताएं उनके आत्म साक्षात्कार और मृत्यु बोध के अवसादपूर्ण गीतों के ही विस्तार हैं, या जिन्हें अंग्रेजी में ऑफशूट्स कहते हैं। एक गहरा अवसाद और मूक मनस्ताप जो बार बार उनके जीवन में हिलोरे लेता है, उन्हें प्रताड़ित और आंदोलित करता है। उनके अंदर जिन दुखांतों का सृजन होता चलता है, उसी के अभिव्यक्ति इस तरह की वर्षा गीतों में हुई है। उनके अंदर जिन दुखांतों का सृजन होता चलता है, उसी की अभिव्यक्ति इस तरह के वर्षा गीतों में हुई है। इस तरह का सर्वोत्कृष्ट गीत सांध्य काकली में संकलित है। पृष्ठ संख्या 286। बादल रे जी तरसे किए उपाय सैकड़ों तन के मन के चरण मिले सज्जन के व्यर्थ प्रार्थना जैसे अब है पंजर पिंजर कर से। अब अंधियाली ही बढ़ती है छाया पर छाया चढ़ती है प्राणों के घन श्याम गगन से बूंदों कभी न बरसे। छिप जाती है छवि बिजली में सर सर से दबती है ही मैं बूंदों की छन से छन उन मन प्राण न मेरे हर से। पूरी कविता में एक व्यंग्य और गहन दुख की अनुभूति का साक्षात्कार है, जो कवि सारा जीवन बादल से संपूर्ण पृथ्वी के लिए, जनसाधारण के लिए सुख, समृद्धि, उल्लास की याचना करता रहा है। जिसने सारा जीवन अपने मन का बिंब उसमें ढूंढा, उसे आत्म साक्षात्कार के स्तर पर कुछ भी नहीं मिला। वह वैसा ही अवसादग्रस्त, तप्त, तितीर्षु और एकाकी है। उसकी सारी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए थीं। उसने अपना जीवन दूसरों के जीवन में समाहित कर दिया था। उसने अपने लिए बचाकर कुछ भी नहीं रखा, लेकिन अब जब वह पीछे मुड़कर दृश्य अवलोकन करता है, तो पाता है कि उसने सब कुछ दे दिया। वह रिक्त है। वैसा ही प्यासा, संतप्त, अवसादग्रस्त, एक अंधेरे दुखांत की ओर लगातार बढ़ता हुआ। इस आत्मदान में शरीर क्षीण जर्जर हो गया, मन चुका गया। वह हाथ जो आपस में जुड़कर लगातार प्रार्थनाएं करते थे, अब उभरी हुई नसों वाले जर्जर ढांचे रह गए हैं। ऐसे हाथों से प्रार्थना अब व्यर्थ है। एक अंधेरे पर दूसरे अंधेरे की तह चढ़ती जा रही है। सब समाप्त प्राय है। वह प्रतिभा और कविता की कौंध, वह तेजस्विता का उजाला, वह उल्लसित, उद्दाम, रचनात्मक सब समाप्त है। कहीं वर्षा नहीं होती, कभी वह उल्लास लौट कर वापस नहीं आता, बल्कि अगर कभी वह बादल मधुर स्वर में बुलाता भी है, तो उसके छदम से मृत्यु ही वहाँ आ खड़ी होती है। उसकी रागिनी में भी अवसान का ही करुण स्वर छाया रहता है। पृष्ठ संख्या 287। बो गई विश्व वायु पश्चिम मेघ के मद हुई रिमझिम रागनी में मृत्यु द्रिम द्रिम तन में अवसान आया। दुख की इस अपरिमित अनुभूति, दुखांत की यह लघुतम महागाथा, अंत का यह शाश्वत सत्य इतना कारुणिक है कि वह हमें डुबो ले जाता है। भावना की आत्मकथन की यही सच्चाई इस कविता का प्राण है, जो हाथ आओ आओ वारिद वंदन, आओ अनिमेष नयन, उतरो अपने रथ से भारत, गरजो विप्लव के नव जलधर, गगन गगन है गान तुम्हारा, जैसी प्रार्थनाओं में जीवन पर्यंत लगे रहे। वही हाथ अब पंजर पिंजर मात्र रह गए हैं। वही हाथ अब पंजर पिंजर मात्र रह गए हैं। अब उन हाथों से यदि प्रार्थना संभव भी है, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ भी बचाकर नहीं रखा जा सकता। दुर्दांत नैराश्य का यह चित्र अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ जाता है। इस कविता का एक पाठांतर गीत गुंज में भी छपा है, जैसा कि निराला का स्वभाव था। वे लगातार अपनी कविताओं में संशोधन परिवर्तन किया करते थे। इस कविता में भी कुछ पाठांतर मिलते हैं। तरसे की जगह गीत गुंज में तड़पे, छपा है पंजर पिंजर कर से। गीत गुंज में पंजर पिंजर कर के छपा है, तड़पे और तरसे में कोई भी अभिव्यक्ति ज़्यादा मार्मिक बन पड़ी है, इस पर विवाद हो सकता है। लेकिन दूसरे भाषांतर में पंजर पिंजर कर से प्रार्थना के संदर्भ में ज़्यादा मार्मिक अभिव्यक्ति बन पड़ी है। प्रार्थना हाथों से ही की जाती है, पंजर पिंजर करके का अर्थ है शरीर के नितांत जर्जर हो जाने पर, करक कर फट जाने पर, दरारें पड़ जाने पर, अशक्त हो जाने पर प्रार्थना व्यर्थ है। इस बिंब में ग्रीष्म से फटी हुई पृथ्वी का बिंब अधिक उभरता है, जबकि कविता अत्यंत आत्मपरक है। इसीलिए मैंने कहा कि सांध काकली की अभिव्यक्ति अधिक सटीक और एकान्विति है, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यक्तिगतता का जिक्र है, दूसरों के लिए प्रार्थना का अस्वीकरण है। इसीलिए नितांत आत्मपरक इस कविता में फिर कवि को धरती के बिंब से जोड़ना उचित नहीं लगता। वैसे तड़पे से तरसे भी मेरी दृष्टि में ज़्यादा सशक्त प्रयोग है। वैसे तड़पे से तरसे भी मेरी दृष्टि में ज़्यादा सशक्त प्रयोग है। तड़पे में शारीरिक कंप की सूचना अधिक है, तरसे में मानसिक अतृप्ति की। तड़पे से पंजर पिंजर करके की संगति अवश्य बैठती है, इसीलिए जब निराला ने कर से परिवर्तन किया होगा तो तुक के अलावा संगति की दृष्टि से भी तड़पे को तरसे कर दिया होगा। पृष्ठ संख्या 288। अगले पदों में भी कुछ छोटे मोटे और परिवर्तन किए गए हैं। गीत गुंज की छाया छाया पर चढ़ती है, पंक्ति सांध्य काकली में छाया पर छाया चढ़ती है कर दी गई है। इस तरह शब्दों के जरा सा स्थान परिवर्तन से अभिव्यक्ति में सुघड़ता और प्रवाह आ गया है। इसी तरह अंतिम पद में गीत गुंज की पंक्ति बूंदों की छन छन से उन्मन, यह पंक्ति सांध्य काकली में बूंदों की छने से छन उन्मन करके दी गई है। जाहिर है कि दूसरी बेहतर अभिव्यक्ति है। जहाँ पहली अभिव्यक्ति में छनछनाहट का स्वर चित्र प्रकट होता है, वहाँ दूसरी अभिव्यक्ति में इस स्वर चित्र के साथ उन्मन मन की उदासी क्षण मात्र को भी दूर नहीं होती। वह कथन भी अभिप्रेत है। क्षण से क्षण में क्षणिकता का भाव अधिक प्रबल है। इसके अतिरिक्त दोनों पाठांतरों के विराम चिन्हों में भी अंतर है। दोनों पाठांतरों की रचना तिथि एक ही दी हुई है। दरअसल अगर सुबह को कविता का पहला प्रारूप तैयार होता होगा तो निराला सारे दिन उस पर सोचते रहते होंगे और बीच बीच में परिवर्तन परिवर्धन चलता रहता होगा। अगर कागज़ पर दोनों पाठांतर शायद बाद में सुरक्षित पाए गए होंगे और उन्हें वैसे ही अलग अलग प्रकाशित कर दिया गया होगा, इस बात का सबूत या संकेत इससे भी मिलता है कि सांध्य काकली की मूल पांडुलिपि में एक कविता दो पाठांतरों में अलग अलग पन्नों पर स्वयं उनके हाथों से भी लिखी हुई है। बहरहाल इस कविता का मूल भाव अवसन्नता और उत्कट नैराश्य की अभिव्यक्ति है। तन के सैकड़ों उपाय करने और सज्जनों के चरण मिलने पर भी कुछ ना हो सकने में एक हल्का सा व्यंग्य भी निहित है। इसी तरह का व्यंग्य बादल छाए कविता की अंतिम पंक्तियों में भी है। बादल छाए ए मेरे अपने सपने, आँखों से निकले मंडलाए, गरजे सावन के घर घिर घिर, नाचे मोर वनों में फिर फिर, जितनी बार चढ़े मेरे भी तार, छंद से तरह तरह तीर, तुम्हें सुनाने को मैंने भी नहीं कहीं कम गाने गाए। आँखों से अपने ही सपनों का निकल कर मंडलाना में जितनी लबालब कारुणिकता है, उसे अंतिम पंक्तियों की उलाहना से निराला संतुलित कर देते हैं। पृष्ठ संख्या 289। ठीक उसी तरह जैसे तरसने की आर्द्र भावात्मकता को सज्जन पुरुषों के चरणों के मिलने से वह संतुलित करते हैं, इसीलिए उनकी गहरी भावुकता से उद्भूत अभिव्यक्ति की गद्यलश्रुता और निरस्त्र दैन्य से बच जाती है। इस तरह के आत्मकथन से पूर्ण वर्षा गीतों के अलावा निराला ने विरह दुख की पारंपरिकता के कुछ वर्षा गीत भी लिखे हैं। शब्द योजना गीत्यात्मकता और लय के सौंदर्यपूर्ण आरोह अवरोह के अलावा कथन की नई भंगिमाओं के कारण भी इस तरह के गीत वर्षा की पारंपरिक उद्दीपनात्मक रचनाओं के मध्य बेजोड़ हैं। एक अली घिर आए घन पावस के द्रुम समीर कंपित वर 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 झरती धाराएं झर 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 जगती के प्राणों में स्मर सर बेध गए कस के। दो वे गए असह दुख भर वारिद झर 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 कर जीवन के मंगल के रवि अस्ताचल ढल के निश तिमिर ग्रस्त वसन स्रस्त त्रस्त नयन छल के तरुणी के अंबर पर। इन दोनों उदाहरणों में पहला उदाहरण शब्द लास्य और ध्वनि सौंदर्य का बेजोड़ नमूना है। पावस के का तुक कस के हंस के और वस के में निराला ने जोड़ा है। तुक का इतना गरिमामय प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि इन तुकों के अलावा इनका कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। जैसे किसी मशीन के दो भागों को ठीक से जोड़ने के लिए सभी नापों के स्क्रू फिट नहीं बैठते। पूरी कविता के स्थापत्य में जैसे ये तुक जड़े हुए नगीने हैं जिनकी चमक पूरी कविता को नए नए अर्थों से झलमलाती रहती है। निराला के इस गीत को पढ़कर विद्यापति की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। पृष्ठ संख्या 290। झम पिघन गरजंती संतत भुवन भरी वसंतिया कंत पाहुन डाक डा हुक सघन खरशर हंतिया। दोनों ही में मेघों के झमाझम बरसने का ध्वनि चित्र उपस्थित किया गया है। विद्यापति की पंक्तियों से झर झर बरसते हुए बादलों के साथ हवा के झकोरे भी शायद चल रहे हैं, इसीलिए विद्यापति ने झम्पी शब्द का प्रयोग किया है। शायद बूंदे हवा के झकोरों से तिरछी गिर रही हैं, इसीलिए उन्हें सघन खरशर के बिंब से अभिव्यक्त किया गया है। निराला में भी हवा के झकोरों में थरथराता हुआ वही वृक्ष है, लेकिन दूसरी पंक्ति का बिंब कुछ यो बनता है मानो बूंदे खड़ी गिर रही हो, धारासार बारिश हो रही हो। दूसरे उदाहरण में पंक्तियों का छोटी होते जाना, उनका संकोच और फिर फैलाव, यह शब्द लाघव तथा दंतसा के प्रयोग का सौंदर्य दर्शनीय है, लेकिन यह मात्र शब्दों का खिलवाड़ नहीं रह जाता। जैसे जैसे पंक्ति छोटी होती जाती है, अर्थ की सघनता बढ़ती जाती है। पारंपरिकता में भी यह एक अनहोना प्रयोग है। इन कविताओं के अतिरिक्त इस तरह की पारंपरिक रचनाएं और भी बहुत सी उपलब्ध हैं जिनमें लाक्षणिक प्रयोगों और वर्षा का नवीनीकरण दर्शनीय है। मेघों के घन केश या प्राण तुम पावन सावन गात इत्यादि गीतों में स्त्री शरीर का बड़ा ही मनोहारी रूपक कवि ने बांधा है। इसके अलावा दो कविताएं और मिलती हैं जिनमें पारंपरिकता का आभास विद्यमान है। एक कविता देवी सरस्वती है जिसमें देवी सरस्वती को षट ऋतु वर्णन के रूपक में प्रस्तुत किया गया है, हालांकि इसमें उस वर्णन की परंपरा से अलग एक प्रयोग है। इसके उपादान ग्राम्य जीवन से ग्रहण किए गए हैं और इनका एक निश्चित उद्देश्य है। दूसरी कविता चौमासा वर्णन से संबंधित है और आराधना के अंत में संकलित है। इस कविता में कोई प्रयोग नहीं है बल्कि यह हर दृश्य से एक पारंपरिक रीत्यात्मक रचना है। वर्षा कविताओं में रंगों का प्रयोग और चित्रण निराला ने बहुत वैविध्य और सूक्ष्मता से नहीं किया है। वैसे भी निराला की रचना चेतना में प्रकाश की श्वेत रश्मियों का ही आधिक्य है। वसंत के संदर्भ में उन्हें गुलाबी और जोगिया रंग ज्यादा पसंद है। वर्षा के संबंध में श्याम रंग के अलावा नीला और सफ़ेद उन्हें बहुत प्रिय है। इसके अलावा उन्होंने बादलों के रंग वैविध्य की ओर सूक्ष्मता से ध्यान नहीं दिया है। श्याम रंग बार बार आता है और उसी को अनेक संदर्भों में अनेक घात प्रतिघातों के साथ निराला ने चित्रित किया है। इस संदर्भ में पंत की रंग चेतना अधिक प्रखर लगती है। पृष्ठ संख्या 291। अपनी बादल कविता में उन्होंने रंग का जितना सूक्ष्म अंकन किया है वह अतुलनीय है। सागर के धवल हास, विशाल जम्बाल जाल, अनिल फेर, उषा के पल्लव आदि बिंबों में बादल के सफ़ेद, गाढ़े श्याम, फिर श्वेत, फिर लालिमा रंगों का एक सुंदर जाल बुना गया है। निराला ने एक कविता में नीले रंग के अपरंपार प्रसार को नीले शब्द की अनेक पुनरावृत्तियों से चित्रित करने की कोशिश की है। नील जलधि जल, नील गगन तल, नील कमल दल, नील नयन द्वय, नील मोर के नील नृत्य, नील कुसुम मग, नील नग्न नग। शायद निराला नील से यहाँ नीले और श्याम दोनों रंगों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इस संबंध में रविंद्रनाथ को भी श्याम रंग ही अधिक पसंद है। श्यामल कांतर रजनी अंधारा, श्यामल घन सजल काजल, निविड़ अमात तिमिर, अंध विभावरी जैसे श्याम रंग के बिंब बार बार उनकी वर्षा कविताओं में लौट कर आते हैं। इस संदर्भ में कालिदास के एक छंद का अनायास ही स्मरण हो आता है। कालिदास विवरणों के सूक्ष्म अन्वीक्षण में ही बेजोड़ नहीं है, रंगों का उनका सूक्ष्म अन्वीक्षण भी वैसा ही बेजोड़ है। बादलों के बदलते हुए रंगों की अद्भुत चेतना और रचना कालिदास के इस श्लोक में पाई जाती है। नितांत नीलोत्पल पत्र कांति भी क्वाचित प्रभिन्ना जन राशि सानि भय, क्वाचित सगर्भा प्रमदस्तन प्रभई समाचितम व्योम घनय समन्ततः। वैसे इसमें भी श्याम रंग ही प्रमुख है, लेकिन उसके सूक्ष्म शेड्स का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। कहीं तो नीले कमलों की पंखुड़ियाँ की कांति वाले, कहीं जिसे पंत ने कहा काजरकारे, और कहीं गर्भवती स्त्रियों के अस्तनों की घुंडियों की तरह ललछौहें। अनेक छायाभासों वाले श्यामल बादलों से सारा आकाश घिर गया है। इतना सूक्ष्म अन्वीक्षण ब्रैकेट में चिरेण नाभिम प्रथमोद्यु नंदवः ब्रैकेट बंद कालिदास ही कर सकते हैं। इस संदर्भ में कोई भी दूसरा भारतीय कवि उनके आगे नहीं ठहरता। निराला ने वर्षा ऋतु को लेकर कुछ प्रयोगात्मक कविताएं भी लिखी हैं। ये प्रयोग विषय वस्तु और शिल्प दोनों से संबद्ध हैं। देवी सरस्वती कविता विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या 292 भाषिक संरचना के स्तर पर स्वयं एक प्रयोग है। षट ऋतु वर्णन की संपूर्ण शब्दावली और संवेदना को निराला ने इस कविता में ध्वस्त कर दिया है। इसी तरह नए पत्ते की एक दूसरी कविता वर्षा भी है। यह कविता पूर्णतया मुक्त छंद में है और इसकी विषय वस्तु लोगों का बागों में आम बीनना और अपने हिस्से लगाना है। इसके अतिरिक्त पूरी कविता में गांव देहात का एकदम गद्यात्मक और कुछ हद तक अकाव्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। दरअसल ये दोनों कविताएं निराला की ऐश्वर्यशालिनी परंपरा सम्मत आभिजात्य काव्य परंपरा से मुक्ति के उसी प्रयास का प्रतिफल है जिस पर हम पिछले अध्याय में विस्तार से विचार कर चुके हैं। निराला के अन्य गीतों या वर्षा कविताओं की तुलना में इन कविताओं में फीकापन अवश्य है, लेकिन इन्हें पढ़ते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि इन कविताओं के द्वारा निराला संपूर्ण भारतीय काव्य परंपरा को तोड़कर शिल्प भाषिक संरचना और विषय वस्तु सभी स्तरों पर एक नई काव्यधारा की शुरुआत और खोज के प्रयत्न में लगे हुए हैं। घने घने बादल हैं एक ओर गड़गड़ाते, पुरवाई चलती है सन मूंग उड़द और धानों के हरे खेत, ढोर चरते हुए आम पकते हुए बागों में लगी भीड़। इस वर्णन में कहीं भी लाक्षणिकता या गूढ़ार्थ नहीं है, ना ही संश्लिष्ट पद योजना, न द्व्यर्थक संकेत, सिर्फ एक सीधा साधा गवई चित्र है। दरअसल निराला अत्यंत सजग भाव से सप्रयत्न इस लोकभूमि पर उतर आए हैं। लोकभूमि पर उतरने का यह संकेत अनामिका की एक कविता खुला आसमान में निराला ने दिया है, जहाँ वर्षा बंद होने के बाद ग्राम्य जीवन में व्याप्त आह्लाद और स्फूर्ति का बड़ा ही सजीव चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत दिनों बाद खुला आसमान, निकली है धूप, हुआ खुश जहान, लोग गांव गांव को चले, कोई बाजार कोई बरगद के पेड़ तले। पृष्ठ संख्या 293 जांघिया लंगोटाले संभले तगड़े तगड़े सीधे नौजवान। पूरी कविता तीन बंदों में है और तीनों बंद ग्राम्य जीवन को आंखों के सामने जैसे सजीव कर देते हैं। जांघिया लंगोटा लेकर निकल पड़ने वाले तगड़े नौजवानों का बिंब निराला को बहुत प्रिय है। नए पत्ते की वर्षा कविता में भी, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, युवक अखाड़ों में जोर करते हुए कहकर फिर इस बिंब को दोहराया गया है। दरअसल इस सजीव चित्र के बिना ग्राम जीवन का चित्रण पूरा नहीं होता। इस लोक भूमि पर उतर कर निराला एक नए काव्य आचार्य की भूमिका में प्रतिष्ठित होते हैं। इसी को निराला ने जनता के हृदय जिया, जीवन विष विषम लिया कहकर इंगित किया है। इस तरह की सीधी साधी विवरणात्मक लोक भूमि की वर्षा कविताओं के चित्रों के संदर्भ में मुझे बार बार नज़ीर अकबरावादी की कविता बरसात की बहार की याद आती है। बादल हवा में ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झाड़ियों की मस्तियों से धुमे मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। इसी लोक भूमि पर उतरकर निराला ने वर्षा संबंधी एक और कविता काले काले बादल आए लिखी है। इसमें उन्होंने कजरी की लोक धुन अपनाई है, लेकिन इस धुन में श्रृंगार परक प्रेम गीत लिखने की जगह उन्होंने पूरी कविता में भोले भाले जनसाधारण की मुद्रा में बैठकर अत्यंत गहरा भविष्योन्मुख और कट व्यंग्य किया है। इस कविता को पढ़कर निराला की भविष्यदर्शी दृष्टि का लोहा मानना पड़ता है। जो स्थितियाँ आज़ादी के 25 साल बाद भारतीय जनता के सामने स्पष्ट हुई, उन्हें निराला ने वर्षों पहले समझ देख लिया था। इस पूरी कविता में आसन्न विनाशकारी वर्षा से सुरक्षा पाने के लिए जनता द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतीक्षा की मुद्रा व्यंजित की गई है। काले काले बादल छाए न आए वीर जवाहरलाल, कैसे कैसे नाग मंडलाए न आए वीर जवाहरलाल, बिजली फन के मन की कौंधी कर दी सीधी खोपड़ी औंधी, सर पर सर सर करते धाए न आए वीर जवाहरलाल। पृष्ठ संख्या 294। पुरवाई की हैं फुंकारे छन छन ए बिस की बौछारे, हम हैं जैसे गुफा में समाए न आए वीर जवाहरलाल। महंगाई की बाढ़ बढ़ आई गांठ की छूटी गाढ़ी कमाई, भूखे नंगे खड़े सरमाए न आए वीर जवाहरलाल। कैसे हम बच पाए निहत्थे बहते गए हमारे जत्थे, राह देखते हैं भरमाए ना आए वीर जवाहरलाल। पूरी कविता में इतना काटता हुआ करारापना व्यंग्य है कि पढ़ने वाले को अपनी मार से तिलमिला देता है। जवाहरलाल यहाँ गांधी जी के शिष्य और एक कांग्रेसी नेता या पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र नहीं हैं, वे पुरानी दंत कथाओं के वीर प्रजापालक प्रजारक्षक राजकुमार की तरह चित्रित किए गए हैं। जवाहरलाल ने बहुत वादे किए, बहुत भाषण दिए, बहुत से दावे किए, लेकिन ऐन मौके पर उनका कहीं पता नहीं। जनता अपने चरित नायक की प्रतीक्षा में आंखें फैलाए खड़ी है। विपत्ति बाढ़ अकाल भुखमरी की अंधेरी गुफा में छिपी है। बाहर हवा का तांडव है, विषैली बौछारें गिर रही हैं, असहाय निहत्थे शांत सीधे सादे सरल लोग झुंड के झुंड बहे जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं या खड़े खड़े शर्मा रहे हैं, लेकिन वीर जवाहरलाल का कहीं पता नहीं। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र की जनता को दिग्भ्रमित करके रास्ते पर छोड़ दिया है। इसमें जवाहरलाल के पहले वीर शब्द की पुनरावृत्ति का व्यंग्य साफ है। यह कविता निराला की व्यंग्य कविताओं और संभवतः संपूर्ण हिंदी साहित्य के व्यंग्य काव्य में अद्वितीय है। साथ ही इसकी गीत्यात्मक लोकधुन और शब्दबंध की नई लोकशैली दर्शनीय है। दरअसल वर्षा का बिंब या ऋतुबिंब निराला के संपूर्ण काव्य जीवन, सारी रचनात्मक क्षमता, ऊर्जा और प्रतिभा की तेजस्विता का बिंब है। जैसा कि मैंने इस निबंध में बार बार दोहराया है, ऋतुओं के माध्यम से वह अपना रचनात्मक सामर्थ्य आजमाते हैं, उसी में अपने को अपने संपूर्ण जीवन बिंब को उपलब्ध करते हैं या धीरे धीरे तिरोहित होता हुआ देखते रहते हैं। उनका उल्लास, उनकी सुख समृद्धि, विकास की आकांक्षा, उनकी वरदान की अनुभूति और उसका निश्चल पवित्र प्रार्थना परक आवाहन, उनका उत्कट असीम नैराश्य, आत्म स्वीकृति, उनकी पावनता की अनुभूति, भीषण मनस्ताप, उनकी विप्लवी मुद्रा, उनका विराट लोकमन, ये सभी उनकी विराट रचनात्मक तेजस्विता के बिंब हैं जिन्हें उन्होंने ऋतुओं के आवर्तन विवर्तन पृष्ठ संख्या 295 में बार बार देखा, जाना पहचाना और महसूस किया है। सच्चे मायनों में उनका अपना कवि जीवन ही ऋतुओं का फेरा है। इसे उन्होंने अपनी अंतिम कविता में अत्यंत शांत और तटस्थ भाव से एक सहज आत्म स्वीकृति के रूप में अभिव्यक्त किया है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ताक रहा है भीष्म सरों की कठिन सेज पर, स्निग्ध हो चुका है निदाघ वर्षा भी कर्षित कल शारद कल्य की, हैम लोमो आच्छादित शिशिर भिद्य वौरा वसंत आमो आमोदित, बीत चुका है दिक चुंबित चतुरंग काव्य गति। यदि वाला ध्वनि अलंकार रस राग बंध के वाद्य छंद के रड़ित गड़ित छुट चुके हाथ से, क्रीड़ाएं वीणा में परिणत मल्ल मल्ल की मारे मूर्छित हुई, निशाने चूक गए हैं झूल चुकी है खाल, ढाल की तरह तनी थी पुनः सवेरा एक और फेरा है जी का।